लाइब्रेरी से लाई हुई किताबों को जब आकांक्षा ने छुआ तो उसे फिर से कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। उसने झटके से उस किताब को खुद से दूर कर दिया। दादू के सामने मुझे इन किताबों से दूर रहना होगा। अगर मैंने इन विजुअल्स देखते टाइम गलती से कुछ बोल दिया तो उन्हें पता न चल जाए कि मैं किसी का पास्ट देख सकती हूँ। आकांक्षा ने राजगीर जी की तरफ देखकर सोचा, जो उस समय टीवी देखने में व्यस्त थे। उसने दोनों किताबों को अपने कमरे में बाकी किताबों के साथ रख दिया। रात को डिनर के बाद आकांक्षा के साथ अपने कमरे में बैठकर वो किताबें पढ़ रही थी। जानवी ने किताबों की तरफ देखकर बोला, पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया था और कौन से जन्म का बदला ले रही है तू मुझसे ये बोरिंग किताबें पढ़वाकर। हे भगवान, एक तो इस लड़की की नौटंकी खत्म नहीं होती, चुप करके पढ़ नहीं सकती क्या? आकांक्षा ने आंखें दरेड़ कर कहा। जानवी ने किताब खोलकर जोर जोर से पढ़नी शुरू कर दी। क्या पढ़ूं इसमें? एक रियासत थी जहां पर कभी कोई तो कभी कोई शासन करता था। कभी कोई विक्रम प्रताप सिंह था तो कभी कोई जय प्रताप सिंह। राजतंत्र था तो राजा का बेटा ही नया राजा बनता था। कुछ नहीं लिखा इन सब के अलावा। पता नहीं किसने लिखी होगी ये बोरिंग किताब। लिखते लिखते नींद नहीं आई क्या उसे? जानवी ने किताब को बंद करके साइड में रख दिया। चल इसे छोड़, ये वाली पढ़ते हैं। आकांक्षा ने किताब का शीर्षक पढ़ा, बिलासपुर और कुछ किंवदंतियां। तू पढ़, मैं सुन रही हूँ, जानवी ने उबासी से लेकर कहा। मुझे पता है कि तू सो जाएगी, इसलिए तू पढ़ और मैं सुन रही हूँ, कहकर आकांक्षा ने वो किताब जबरदस्ती जानवी के हाथ पर रख दी। अब जानवी के पास उस किताब को पढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अच्छा, पूरी बुक को रहने देते हैं, सिर्फ राजकुमार रिवान से जुड़ी हुई किंवदंती को पढ़ते हैं। आकांक्षा ने अपना चश्मा उतारकर साइड में रख दिया और बोला, हाँ तो पढ़, तू कितने भी बहाने बना ले, ये किताब तो मैं तुझी से पढ़वाऊंगी। जानवी ने किताब पढ़नी शुरू की। वैसे तो बिलासपुर में कई किंवदंतियां फैली हुई थीं, लेकिन जो सबसे प्रचलित थी वो थी सन 1850 से जुड़ी हुई घटना। सन 1850 में बिलासपुर में काले जादू का बहुत बोलबाला था। सभी लोग शक्ति और सत्ता के लालच में काले जादू को सीखते और उसका प्रयोग करते थे। इन्हीं में चार नौजवान दोस्त थे जो बिलासपुर के शमशान में तंत्र विद्या का प्रयोग करते थे। वो चारों भी शक्तिशाली बनना चाहते थे, लेकिन उन चारों में से किसी के भी ग्रह नक्षत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो एक बड़ी पूजा को अंजाम दे सके। उन चारों ने अपने बुरे कामों को अंजाम देने के लिए राज्य के अगले उत्तराधिकारी राजकुमार रिवांश को चुना। पूरे बिलासपुर में राजकुमार रिवांश के बारे में सबको पता था कि उनका जन्म एक विशेष मुहूर्त में हुआ था, जिसके अनुसार उनके द्वारा किया हुआ हर कार्य सफल ही सिद्ध होगा। लेकिन राजकुमार रिवांश को किसी कारणवश विलायत पढ़ने भेज दिया गया था। आकांक्षा ने उसकी बात को बीच में बोला, मतलब उस समय में भी लोग बाहर पढ़ने जाते थे? जानवी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तब तक ब्रिटिश सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी, तो शायद अंग्रेजी भाषा भी अपने इंडिया में आ गई होगी। वैसे भी तूने सुना नहीं क्या, ज्यादातर राजा लोग थे वो अंग्रेजों के गुलाम ही थे। आकांक्षा ने वापस चश्मा लगाते हुए कहा, ये बुक इधर दे, आगे मैं पढ़ती हूँ। आकांक्षा ने आगे पढ़ना शुरू किया। राजकुमार रिवांश अपनी पढ़ाई को पूरी करके विदेश से वापस लौट रहे थे। उस दिन पूर्णिमा की रात थी। भले ही रात को आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उस रात चांद पर ग्रहण लगने वाला था। काली शक्तियां अपने चरम पर थीं। उसी वक्त को उन चारों ने अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए चुना। महल लौटते वक्त रास्ते में घना जंगल था जिसमें उन पांचों ने वो रात बिताई थी। कहते हैं उस रात स्वयं शैतान जागृत हुआ था और उन पांचों को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई थीं। कुछ लोगों का मानना है कि राजकुमार रिवांश अपने दोस्तों के भ्रमजाल में आकर उनकी कुनीतियों का शिकार हो गए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि राजकुमार रिवांश ने शक्तियां हासिल करने के लिए स्वयं वो पूजा की थी। उस रात के बाद वो जंगल शापित हो गया। शैतान की परछाई ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया। वहां चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस रात के बाद सूरज की रोशनी भी उस जंगल को छू नहीं सकती। आकांक्षा ने राजकुमार रिवांश से जुड़ी हुई बातें पढ़कर उसके बारे में सोचने लगी। तभी जानवी ने हैरानी से आंखें बड़ी करके कहा, क्या सच में वो राजकुमार अपने दोस्तों की बातों में आ गया था या फिर उसे खुद को शक्तियां चाहिए थीं? आकांक्षा ने हंसकर जवाब दिया, तू तो मुझे ऐसे पूछ रही है जैसे उस रात उन पांचों के साथ मैं भी उस जंगल में मौजूद थी। आगे पढ़ने दे मुझे, वो उसे फिर से पढ़ते हुए बोली। उस भयानक रात के बाद बिलासपुर में एक के बाद एक मौतें होने लगी। जो भी उस जंगल में जाता लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। कहते हैं उस रात के बाद उस जंगल में भी पिशाचों का डेरा है। अक्षु, वैसे उस जंगल का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? जानवी ने किताब में बने एक छोटे से नक्शे को देखकर कहा। आकांक्षा, अगर इस मैप के हिसाब से जाएं तो वो जंगल हमारे शिमला के पास वाला जंगल ही है। यहाँ से लगभग एक घंटे दूर। इसका एक कोना शहर की आबादी की तरफ भी लगता है। थैंक गॉड, ये जंगल यहाँ से एक घंटे दूर है। मैं तो उस तरफ कभी ना जाऊँ। जानवी ने हाथ जोड़े। क्यों ना हम वहाँ पर जाएं और जाकर सच्चाई का पता लगाएं? आकांक्षा के कहते ही जानवी ने उसे समझाया, देख बहन, ये सच्चाई सच्चाई वाला गेम किताबों तक ही ठीक है। देखा नहीं कैसे लोगों की लाशें मिल रही हैं उस जंगल के पास से? ना तो मैं जाऊंगी और ना ही तुझे जाने दूंगी। रात के 12:30 बज रहे हैं, अब चुपचाप सो जा। आकांक्षा ने मुंह बनाकर जवाब दिया, अच्छा ठीक है, सो जाऊंगी। और वैसे भी किताबें भी तो जमा करवानी है, कल ही इन्हें वापस कर देंगे। और कल से तो रेगुलर कॉलेज भी जाना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज भी जाएंगे, लाइब्रेरी भी जाएंगे, फिर कैफे भी जाएंगे, और तो और इवनिंग वॉक के लिए पार्क भी जाएंगे। सब जगह चलेंगे, लेकिन उस जंगल में कभी नहीं, आकांक्षा ने चश्मा उतार कर रखते हुए कहा। अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब जाकर लाइट्स तो ऑफ कर दे। जानवी, मुझसे नहीं उठा जाता, आंखें बंद कर ले, अपने आप अंधेरा हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आकांक्षा ने उठकर कमरे की लाइट्स बंद की और जानवी के पास बेड पर आकर सो गई। रात के 12:30 बज रहे थे। जानवी और आकांक्षा दोनों गहरी नींद में सोई थी। आकांक्षा को फिर से वही अजीब खौफनाक सपने आने लगे, जिन्हें देखकर वो नींद में बड़बड़ा रही थी। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? जानवी कहाँ है तू? मुझे अकेले ही भेज दिया यहाँ, कोई है? कहाँ पर आ गई मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ? इतना अंधेरा क्यों है यार? देखती हूँ आगे चल करके कहीं कुछ दिखे तो। आकांक्षा को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब वो नींद में जंगल में पहुंच गई। जंगल के एक हिस्से में जादुई पिंजरे में वो चारों पिशाच, रवि, रघु, संजय और विजय कैद थे, जबकि रात के अंधेरे में बाकी पिशाच अपने शिकार की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे क्रमशः।